તારીખ 29/5/1996 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 70 અને 398 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 256.
शुरुआत वाले को अनुभव का अनुभव के लिए कैसे प्रयत्न करना, प्रश्न में दो बात है. एक तो अनुभव के लिए प्रयत्न करने की बात है, और अनुभव के लिए प्रयत्न करना है तो कैसे करना चाहिए, दो बात. मुमुक्षुता के लिए कैसे प्रयत्न करना चाहिए वो प्रश्न नहीं है. मुमुक्षुता के लिए शुरुआत में क्या करना चाहिए वो अलग बात है, और अनुभव के लिए प्रयत्न करना वो अलग बात है. तो अनुभव के लिए जो प्रयत्न करना है वो तो मुमुक्षुता में आगे बढ़ा हो वही अनुभव के लिए प्रयत्न कर सकता है. जिसको मुमुक्षुता भी यथार्थ रूप से आई न हो और मुमुक्षुता वर्धमान हुई भी नहीं हो और उत्कृष्ट मुमुक्षुता भी नहीं आई हो वो अनुभव के लिए प्रयास नहीं कर सकता है. उनको पहले मुमुक्षुता के लिए प्रयास करना चाहिए. तो जो मुमुक्षुता की भूमिका है उस भूमिका की बातें चलेगी. उस यहाँ अनुभव की बात है कि प्रथम शुरुआत वाले माने प्रथम जिसको अनुभव नहीं हुआ हो कभी भी, उसको अनुभव के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए. तो उनको कहते हैं उत्तर में कि मैं परिणाम मात्र नहीं हूं. त्रिकाली ध्रुवपने में अपनापन थाप देना, स्थापित करना यही उपाय है. अनुभव के लिए तो अपने स्वरूप में अहम भाव स्थापित करना है, यही एकमात्र उपाय है. अनुभव के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है. स्वरूप के अवलंबन बिना, स्वरूप का अवलंबन लिए बिना कभी अनुभव नहीं होता है. और अवलंबन अहम भाव से आता है, मैंपणा से आता है. तो वो बात उसमें गर्भित है कि जिसको स्वरूप का लक्ष्य हुआ हो वही उस प्रकार का अवलंबन का पुरुषार्थ करता है, और अवलंबन का उग्र पुरुषार्थ होते ही अनुभव होता है. अवलंबन का भी उग्र पुरुषार्थ होते ही अनुभव होता है. सामान्य पुरुषार्थ से भी अनुभव नहीं आता है. वो अनुभव का प्रयास है लेकिन अनुभव नहीं आएगा. अनुभव के लिए तीव्र पुरुषार्थ चाहिए. पुरुषार्थ की मात्रा अति तीव्र होती है तब अनुभव होता है. पुरुषार्थ मैंने चैतन्य वीर्य की स्फुरणा, जो संवेग है मुमुक्षु की भूमिका में, वो भावभाषण के काल में एक आत्मवीर्य की स्फुरणा में परिवर्तित होता है. और स्वरूप सन्मुख दिशा को धारण करता है। स्वरूप सन्मुखता होते ही उग्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि स्वरूप प्रत्यक्ष है। ज्ञान में स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ तो पुरुषार्थ का उछाला जोर से आएगा और वो अति तीव्र मात्रा में होते ही अनुभव होगा, इसके पहले अनुभव नहीं होगा। अब थोड़ा और भी स्पष्टीकरण इस वचनामृत में देना आवश्यक लगा है, इसलिए ब्रैकेट में दिया है कि अनादि पर्याय बुद्धि सहित मुमुक्षु जीव है। मुमुक्षु जीव है तो अनादि पर्याय बुद्धि सहित तो है ही, पर्याय बुद्धि को अभी अनुभव होते द्रव दृष्टि होते जाएगी तो पर्याय बुद्धि तो है ही। ऐसा मुमुक्षु जीव उपदोष उपदेश बोध के अनुसार सर्वप्रथम वो उपदेश बोध को अंगीकार करता है। सिद्धांत बोध परिणमन के परिणमन होने के कारणभूत ऐसा उपदेश बोध, कैसा उपदेश बोध कि सिद्धांत बोध परिणमन होवे इसके कारणभूत जो उपदेश बोध है, उपदेश बोध तो अन्य मत में भी होता है वैरागोक्षम का, लेकिन यहाँ तो सिद्धांत बोध का परिणमन का कारण हो जाए ऐसा उपदेश बोध। ऐसा मैंने कैसा, एक एक बात को ऐसा मैंने कि जिस उपदेश बोध को परिणमन होते हुए दर्शन वो गल जाए, दर्शन वो गल जाए, दर्शन वो गले तभी सिद्धांत बोध का परिणमन होगा। अन्य मत में उपदेश बोध है कषाय मंद होता है, कषाय रस भी मंद होता है, लेकिन दर्शन वो नहीं गलता है। क्योंकि ग्रहित में तो है ही, ग्रहित विख्यात में तो है ही, मैंने सिद्धांत उल्टा छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा है, तो उनको तो दर्शन हो तो तगड़ा है। अपना संप्रदाय का जो सिद्धांत है, अपना तत्व संप्रदाय के तत्व ज्ञान का जो सिद्धांत है वो तो पकड़ के रखा है, जैसे कि कोई वेदांती है वो आत्मा को ध्रुव मानता है और परिणामी भी मानता है, कुटस्थ भी मानता है, लेकिन पर्याय रहित सर्वथा मानता है। उतना ही नहीं, जड़ से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि जड़ चेतन दो तत्व नहीं, और सर्वव्यापक भी मानता है, एक परम ब्रह्म सारे विश्व में सर्वव्यापक है ऐसा मानता है, उनके सिद्धांत में वो प्रतिपादन किया है, वो उसने स्वीकार किया है, पर उपदेश बोध के अनुसार वैरागुप्सम उदाहरण भी करता है, त्याग भी करता है, जंगल में भी जाता है, गृहस्थी को छोड़ता भी है, घर व्यापार छोड़ करके जाता है, कषाय मंद होता है, कषाय रस भी मंद होता है, लेकिन दर्शन वो मंद होता। तो यहाँ तो जैन दर्शन के सिद्धांत को अंगीकार करने के लिए जो जिज्ञासु है, अभिलाषित है, ऐसे मुमुक्षु को लिया है, तो वो पर्याय बुद्धि होने पर भी होने से उपदेश बोध अनुसार अपनी भूमिका योग्य परिणाम से प्रारंभ करता है। जो भूमिका में है उस भूमिका अनुसार वो परिणाम उसका चलता है। उसमें प्रारंभ में क्या होता है कि मुझे परिभ्रमण नहीं करना है, वो बात रही पर्याय की। मुझे मेरी परिपूर्ण आत्मशुद्धि, पूर्णता का लक्ष्य में पूर्ण आत्मशुद्धि करना है, वो भी बात हुई पर्याय की। और अपक्षपात रूप से परिणाम देखेगा, वो भी विषय रहा परिणाम का, चर्चा भी करेगा परिणाम की। अब ऐसे परिणाम की चर्चा करते हुए परिणाम में जो अस्तित्व स्थापित कर रखा है अनादि से, पर्याय बुद्धि से, पर्याय दृष्टि से, अगर वो दृढ़ कर लेता है तो उनको दृढ़ दृष्टि होने का अवसर आता है। तो उनके लिए एक और विशेष बात है। वो बात ऐसी है कि भले ही परिणाम की मुख्यता से शुरुआत हुई मुमुक्षुता के, और परिणामों का ही विषय भले ही मुख्य रहा हो, लेकिन एक बात उसके ख्याल में, समझ में, अभिप्राय में होनी चाहिए कि परंतु करके लिखा है वहां, तो सब परिणाम से प्रारंभ करता है, परिणाम में आगे बढ़ता है, परिणाम में मुमुक्षुता के योग्य थोड़ा सुधार भी होता है, दर्शनों का अनुभव भी करता है, ज्ञान की निर्मलता आती है, परंतु वो बात थोड़ी बात विशेष है कि सर्वप्रथम पर्याय में से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है, वो बात अभिप्राय में होना होनी चाहिए है। हाँ, शुरू से वो बात ख्याल में तो होनी चाहिए, लक्ष्य में तो होनी चाहिए, वरना पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाएगी तो दर्शन वो भी दृढ़ हो जाएगा। मुमुक्षुता की शुरुआत तो परिणाम की मुख्यता से ही होगी, इसके बिना तो मुमुक्षुता आएगी नहीं, और दृढ़ दृष्टि बिना मोक्ष मारेगा नहीं, घुलाट खानी पड़ेगी बाद में। पर्याय की मुख्यता के बिना मुमुक्षुता नहीं आएगी। मेरा आत्मकल्याण मुझे करना है, मेरे शुद्ध होना है, मेरे अशुद्धि नहीं चाहिए, ये दोष और दुर्गुण मुझे नहीं चाहिए, परिभ्रमण मुझे नहीं चाहिए, वो बात आए बिना मुमुक्षुता नहीं आएगी। और पर्याय बुद्धि छोड़ करके दृढ़ दृष्टि हुए बिना मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ नहीं होगा, शुरुआत नहीं होगी। दोनों बात अपनी समझ में तो होनी चाहिए, बिल्कुल इस विषय की क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ साफ। वरना पर्याय बुद्धि तो अनादि से है और तीव्र हो जाएगी, ये बात बनेगी, इसलिए यह स्पष्टीकरण दिया है। है ही नहीं, सम्यक दर्शन का विषय ही नहीं है। सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा की कोई चर्चा नहीं है, भेद ज्ञान की कोई चर्चा नहीं है, स्वानुभूति की चर्चा है। वो लोग भी स्वानुभूति शब्द का प्रयोग करते हैं वेदांत में, और अनिर्वचनीय है। स्वानुभूति कैसी है? अनिर्वचनीय है, वो वहां तक बात चलती है। हाँ, आत्मा आत्मा से आत्मा में स्थिर हो जाना है, ऐसा बोलेंगे क्या? गीता में आता है दूसरा अध्याय में, सांख्य योग करके दूसरा अध्याय है उसमें, कि आत्मन्येव आत्मना तुष्टाः स्थित प्रज्ञ स्थितौच्यते। आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट होकर होता है उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ मैंने जिसकी प्रज्ञा, जिसका ज्ञान आत्मा में स्थित हुआ उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ज्ञानी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ऐसी बातें आती है, लेकिन बिना भेद ज्ञान, बिना द्रव्य दृष्टि, बिना सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन का कोई भेद नहीं मानता। वो भी दिव्य ध्वनि में से वो बात अच्छी लगी तो वो उठा लिया, बात तो दिव्य ध्वनि की है आखिर में, वेदांत की नहीं है। मूल में तो तीर्थंकर देव की बात है, उन लोगों को अच्छी लगी, प्रिय लगी, तो उनको मुख्य करके शास्त्र रचना, ग्रंथ की रचना हो गई। सब हजारों ग्रंथों की रचना उन संप्रदाय में हुई है, उस संप्रदाय में। और जिसको जितनी बुद्धि थी वो लगाई उसमें, वो तो बुद्धि से तो ग्रंथ रचना होती है। यहाँ तो जैन दर्शन में तो पर्याय बुद्धि क्या, द्रव्य बुद्धि क्या, मिथ्या दृष्टि क्या, सम्यक दृष्टि क्या, परिणाम का सुधार करना है तो भी पर्याय में से अस्तित्व उठा करके, द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है, सम्यक प्रकार से परिणाम का सुधार वहां से होगा। इसके पहले परिणाम का सुधार है लेकिन सम्यकता नहीं आई है, यथार्थता आई हो लेकिन सम्यकता नहीं आई है। मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता आ सकती है, सम्यकता तो द्रव्य दृष्टि हुए पहले आती नहीं है। शुरुआत वाले को मुमुक्षुता के लिए कैसे प्रयत्न करना है, अजीत भाई का प्रश्न है। वो करता तो आगे भी चलिए आपके प्रश्न में, कि सबसे पहले परिभ्रमण की चिंतना, वेदना और झुरना आनी चाहिए, फिर इसके बाद क्रम से पूर्णता का लक्ष्य आता है और अपना परिणाम का अवलोकन आता है। प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है और शुरू से ही उदासीनता का क्रम चालू होकर के आगे सभी स्टेज में उदासीनता का क्रम तो बढ़ता ही है। तो ये सब बातें तो मुमुक्षुता क्रम में है, यहाँ ये प्रश्न एजेंडा पर नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। हाँ, भाव भाषण करने के लिए भी वो बात होनी चाहिए और होने, भाव भाषण के बाद तो स्पष्ट है कि जो स्वरूप लक्ष्य में आया है वहीं मेरा अस्तित्व, मेरी श्रद्धा ग्रहण करेगी अनुभूति के काल में, तभी सम्यक दर्शन होगा। तो अभिप्राय में तो सर्वप्रथम पर्याय में से अस्तित्व उठा करके द्रव्य स्वभाव में अस्तित्व स्थापित करना है। ऐसा लक्ष्य मैंने अभिप्राय में ख्याल रहना, प्रारंभ से ही रहना अति आवश्यक है। जो बात शुरू से ही अपने ख्याल में नहीं रही, अभिप्राय में नहीं रही, तो पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाती है, अनजाने में भूल से पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाती है। दृढ़दृष्टि प्रकाश में स्पष्टीकरण देना पड़ा है, वरना वो बात समझ में नहीं आती। क्या लिखा, ऐसा लक्ष्य प्रारंभ से ही रहना अति आवश्यक है। तो दोनों बात का मेल तभी खाएगा, वरना पर्याय की मुख्यता से चालू होगा तो बहुत मुख्यता कर लेगा। वो बात हो जाएगी। हाँ डिप्रेशन भी आ जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी तो उलझन में आ जाएगा, तो डिप्रेशन में आ जाएगा। ऐसे अपने गुरुदेव के मुमुक्षु समाज में समय सार का स्वाध्याय अधिक रहा, अपने सभी मंडलों में सभी मुमुक्षुओं में समय सार का स्वाध्याय अधिक रहा, और गुरुदेव ने द्रव्य दृष्टि का विषय बहुत 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 करके समझाया, वेद ज्ञान का विषय भी बहुत समझाया। तो क्या गड़बड़ हुई कि प्रारंभ कहाँ से होता है वो बात रह गई, मुमुक्षुता का प्रारंभ कहाँ से होता है वो बात रह गई, जबकि गुरुदेव ने तो बताई है पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही मुमुक्षुता की वास्तविक शुरुआत है। वो सूत्र सिद्धांत तो गुरुदेव ने प्रारंभ में दिया है, 1995 में दिया है, वो तो 1995 के व्याख्यान में वो बात हम लोगों ने हमने तो देखी, जबकि हमारा प्रवेश उसके बाद 18 साल के बाद हुआ है, वो तो 2013-14 में हुआ है प्रवेश। लेकिन आत्मसिद्धि शास्त्र के 80 नंबर के गाथा पर प्रवचन करते हुए राजकोट में वो बात चली थी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहां से मिलता है। इसके पहले भी बोला होगा जो अपने को मालूम नहीं है, लेकिन वो तो ग्रंथारूढ़ हो गई बात, वहाँ पुस्तकारूढ़ हो गई है वो बात। तो वो बात भी किया है गुरुदेव ने, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं रही। तो वो बात छोड़ करके जैसे वेदांत वालों ने अनुभूति की बात उठा ली, ऐसे वो लोग अपने लोग भी उठाते हैं, मैं एक नायक हूँ, वेद ज्ञान ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, द्रव दृष्टि ऐसा है, वो है, छठी गाथा में ऐसी बात है, ये सब चलता है। तो प्रारंभ तो होता है पर्याय की प्रधानता से, तो उसमें अंतर क्या हुआ? आप ये कहेंगे कि पर्याय की प्रधानता तो सामान्य रही, लेकिन अंतर क्या हुआ कि पहले संसार पर्याय की प्रधानता थी, सांसारिक राग, सांसारिक संयोग, अनेक प्रकार के विभाव, रंग राग में जीव मस्त था, संसार में रंग राग में मस्त था। अब उनको पता चला कि ये सब दूषित परिणाम है, दुख देते हैं, दुखदायक हैं, निर्दोष होना जरूरी है। वो बात भी पर्याय की रही, तो प्रारंभ से उनके ख्याल में एक बात डाली जाती है कि ठीक है शुद्ध होना है, लेकिन ख्याल रखना कि द्रव्य स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक प्रकार से परिणाम का सुधार आता है, इसके पहले सम्यक तो शुरू नहीं होता है। यथार्थता आती है अगर यथार्थ क्रम से मुमुक्षुता का प्रारंभ हुआ तो, वरना यथार्थता भी नहीं आती है। शास्त्र पढ़ता है, पूजा भक्ति करता है, दया दान करता है, यात्रा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन यथार्थता आती कोई व्रतादि का पालन भी कर लेता है, कोई उपवास करके तपश्चर्या भी कर लेता है, लेकिन उसमें कोई ठिकाना होता नहीं है। जैसा जिसकी बुद्धि में मति में आया, ज्ञानी की आज्ञा बिना वैसे ही यदवा तदवा, अगर अपने जब ठीक लगा वैसा कर लिया, चलो पर्व के दिन है चलो उपवास कर लो, ये कार्तिक महीना हो गया चलो यात्रा कर लो। आप लोग कार्तिक में यात्रा ज्यादा करते हैं, दिगंबर लोग कार्तिक महीना में यात्रा, चतुर्मास पूरा होता है ना, सितंबर में भी वो बात है, चतुर्मास में यात्रा नहीं करते, चतुर्मास पूरा होने के बाद कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा से की यात्रा चालू हो जाती है तो यात्रा चालू कर देते हैं और रोजाना शास्त्र स्वाध्याय और मंदिर में भगवान का पूजा वगैरह तो चलता ही है, तो मुमुक्षु का के तो सब परिणाम होते ही हैं। तो ऐसे तो कभी आत्मकल्याण होता नहीं, वो करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। हाँ, वहाँ से उनका बीज बोया जाता है, ये बोध बीज योग्य भूमि का है। सत्पुरुष की पहचान होती है तो संकेत का बीज वहां से बोया जाता है, सम्यक दर्शन का, द्रव्य दृष्टि को होकर सम्यक दर्शन को वहां बीज बोया जाता है।
किसी
को सत्पुरुष के बिना ये बात कौन समझाएगा? जैसे सर्व संप्रदाय में दोष को मिटाना और गुण को प्रकट करने की बात तो है ही, अशुभ को छोड़ करके शुभ में आने की तो बात बहुत सामान्य है, वो तो मुसलमान में भी है, कुरान में भी है और ये बाइबल में भी है। हाँ, ये बात तो सब में है, लेकिन गुण अवगुण की चर्चा जो आस्तिक के दर्शन है सब उसमें भी अच्छी है कि अवगुण किसको कहना, गुण किसको कहना, लेकिन द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि की बात जैन दर्शन के अलावा और कहीं जगह नहीं है। विज्ञान नहीं है, पदार्थ विज्ञान नहीं है, उपदेश है, उपदेश के लिए न्याय भी है, न्याय के ग्रंथ बहुत हैं उन लोगों में, उपदेश के लिए न्याय बहुत निकालते हैं और बहुत बुद्धिशाली लोग हुए न्याय निकालने में, बहुत अच्छे अच्छे न्याय निकालते हैं। न्याय है, युक्ति है, उन लोगों का प्रमाण है, अनुमान है, तर्क है, पर उन लोगों के अपने अपने आगम भी है, लेकिन पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग नहीं है। एक द्रव्यानुयोग नहीं है, एक करणानुयोग नहीं है, क्योंकि दोनों केवल ज्ञान अनुसार कहीं बातें करता है, वो बात वहां नहीं है। मोटी मोटी बात है, जैसे करणानुयोग की वो बात आएगी कि 84 लाख योनि में जीव भटकता है, वो हिंदू धर्म में है 84 लाख योनि वाली बात। हाँ, लेकिन 84 लाख कैसे वो नहीं है, क्योंकि वो गिनती केवल ज्ञान में आती है, लेकिन वो बात दिव्य ध्वनि से उठा लिया, बात तो उठाई है सब दिव्य ध्वनि से, कहा अन्य मत निकला है ऋषभदेव भगवान की वाणी से, तो बात तो निकली है। और उपदेश चला है, काफी उपदेश चला है, इतना उपदेश चला है कि वहां भी अच्छे अच्छे लोग त्यागी हो जाते हैं, घर संसार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, इतनी इतनी दाढ़ी बढ़ जाती है, उन लोगों को भी जंगल में रहते हुए इतनी दाढ़ी बढ़ जाती है, नग्न रहते हैं, कोई बलकल पहनते हैं, कोई वस्त्र पहनते हैं, कोई नग्न रहते हैं, अनेक प्रकार के वहां भी है त्यागी। द्रव्य दृष्टि वाली बात नहीं है, पर्याय दृष्टि छोड़ाना है और द्रव्य दृष्टि करने की बात वहां है। जैन दर्शन में वो बात प्रारंभ से ही समझाई जाती है, बिल्कुल शुरुआत से, जिससे द्रव्य दृष्टि उस पर्याय बुद्धि दृढ़ हो जाती है तो द्रव्य दृष्टि उत्पन्न होना मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है। और मुमुक्षुता में ही मनुष्य आयु पूर्ण हो जाती है, वो करते करते मुमुक्षुता के लायक परिणाम करता रहेगा और मनुष्य आयु पूरा हो जाएगा। और भव भ्रमण का छेद नहीं होता, वो तो द्रव्य दृष्टि और स्वानुभूति होते ही भव बीज का नाश होता है। इसके पहले भव बीज का नाश नहीं होता है, भव बीज का अभाव नहीं होता है। और जैन दर्शन तो भव भ्रमण मिटाने के लिए है, इसलिए परिभ्रमण की वेदना प्रारंभ में आई है। उसका प्रारंभ भी परिभ्रमण की वेदना से, क्यों कि सारा संप्रदाय ही भव 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 भ्रमण छुड़ाने के लिए है, भव बीज को मिटाने के लिए है। सिद्धांति वही है, सम्यक दर्शन में वही पहला काम होता है। सम्यक दर्शन और स्वानुभव हुआ मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी पहलू पगतियों से क्या हुआ कि भव भ्रमण की अनंतता का बीज सर्वनाश हो गया। इस जीव को अनंत भव हुए, अनंत काल परिभ्रमण हुए, वो बात होने वाली। अरे च्युत हो जाए तो भी, मिथ्या दृष्टि हो जाए तो भी, अनंत काल भटकने वाला, क्योंकि उसका तो भव बीज तो जल गया। भव बीज जल गया उनको तो मिथ्यात्व आएगा तो भी अनंत परिभ्रमण रहने वाला। यथार्थता के कारण से आयुष पूर्ण होने तक उसको मार्ग मिलता नहीं है, और जब मार्ग मिलता है क्रम से तो स्पीड आने में देर लगती नहीं है, वो तो बहुत अल्पकाल में अपना काम करता है।
ये सत्पुरुष के विषय में भुला है,
हाँ भुला है, तो सत्पुरुष के विषय में भुला है, क्रम के विषय में भुला है, दोनों जगह भुला है। सत्पुरुष की बात तो फर्स्ट थॉट में आती है, वो तो पहला ही विचार आता है कि मुझे भव भ्रमण से मुक्त होना है और आत्मज्ञानी एकमात्र इसका उपाय है, तो मुझे आत्मज्ञानी के पास जाना ही चाहिए। मेरा भव रोग है कोई वो मिटा सकता है, आत्मज्ञानी के बिना मैं अपने आप तो मेरा भव रोग मिटाने को समर्थ नहीं हूँ। वो अपनी वर्तमान स्थिति को बराबर समझता है तो विवेक करता है, उनको वो विवेक की सूझ आती है। इस प्रकार के विवेक की सूझ आती है और प्रयोजन में तो वो सूझ आना बहुत स्वाभाविक है। गांवड़े के गवार को भी दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए सिखाना पड़ता नहीं है, उनको एकड़ा सिखाने के लिए स्कूल में बिठाना पड़ता है, ट्यूशन देना पड़ता है। लेकिन दर्द होवे तो डॉक्टर के पास जाने के लिए उसको कभी ट्यूशन देना पड़ा नहीं है। उतनी सामान्य बुद्धि तो भैंसा चराने वाले को भी, भेड़िया चराने वाले को भी होती है। हम लोग तो अच्छे अच्छे अक्कल वाले हैं और फिर भी सत्पुरुष के विषय में भूले हुए भी हैं। ये बात है, क्या बुद्धिमानी कहना है? तो उसको बुद्धिमानी कह सकते हैं। और दूसरा क्या प्रश्न है कि पुण्य योग भाग्य वशात सत्पुरुष मिल भी जाते हैं, तो सत्पुरुष मिला भी बहुत बार, नहीं मिला ऐसी बात तो नहीं है। इस भव में भी मिला और अगले बहुत भव में भी मिला है, तो ज्ञान की मांग किया है, भक्ति की मांग करने के बजाय ज्ञान की मांग किया है। वो दूसरी भूल होगी, वो दूसरी भूल होगी।
अधिकांश में जीव यही भूलता है। सतपुरुष के पास में आकर के बोलता है सम्यक दर्शन हो, कैसा हमारे को
कोई सम्यक दर्शन मांगता है तो कोई दूसरी दूसरी दशा के लिए हम कैसे आगे बढ़े। हमको पूर्णता का लक्ष्य कैसे हो, हमको अवलोकन कैसे हो, हमको भेद ज्ञान कैसे हो, आप सिखाइए। हाँ, या फिर आखिर में हमको अनुभव कैसे हो, ये भी भूल होती है। चक्रवर्ती से मांगा कि मेरे झोंपड़ी में पानी गिरता है तो जरा ऊपर का छत ठीक करा दो, कुछ नलियां फूट गए हैं, टूटे फूटे हैं, उसको रिपेयरिंग करवा दो। या मैं चलता हूँ तो लेकिन मेरी जूती फट गई है तो सिलाई करवा दो, रिपेयरिंग करवा दो। ये बात हो गई।
है? हम आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अगर वो मार्गदर्शन लेता तो इसका मतलब सतपुरुष अभी तक मिले ही नहीं।
तो कहा है
मान करके रखा है कि ये पर मिले ही नहीं।
तो कहा है जी, ठीक बात है, उनको सतपुरुष मिला ही नहीं है, क्योंकि उनको जो बहुमान आना चाहिए वो आया
नहीं है,
जो भक्ति आनी चाहिए वो नहीं आई है।
है? सतपुरुष मिलने के बाद तो समाधान बरतने लगता है
बरतता ही। तो कपाल उदय में थोड़ा फटकार आए खिमजी भाई करके, कोई कच्छ के थे वो तो प्रश्न बार बार पूछते थे, तो एक दफे वो लिख दिया कि आप ज्ञान की मांग तो करते हो लेकिन भक्ति प्रेम रूप हुए बिना जो ज्ञान मिलता है वो तो शून्य है, ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके भी आप क्या करोगे, वो तो शून्य है, कि ज्ञान का अहम भाव हो जाएगा कि मैं भी कुछ जानता हूँ, एक बात। दूसरी बात जो फटका रहा है वो दूसरी बात है, तो उसमें से एक दूसरी बात निकाली कि आपको ज्ञान चाहिए मगर ज्ञानी
नहीं चाहिए,
ज्ञान चाहिए मगर ज्ञानी नहीं चाहिए। और यही भूल अनादि से जीव की रही है कि ज्ञान की तो वांछा किया है, ज्ञानी को इच्छते नहीं है। उसमें क्या है कि ज्ञान तो चाहिए लेकिन ज्ञानी नहीं चाहिए, तो बिना ज्ञानी भी ज्ञान कैसे मिलेगा, बिना ज्ञानी भी ज्ञान तो मिलता नहीं है। वो तो क्या है 293 नंबर है ना, 263। और बात एक लिखी है वो शब्द में नहीं याद आती है, भाव में तो ख्याल में है, ऐसा ही जो रुका है वह योग्यता की न्यूनता के कारण है, और आप ज्ञानी की अपेक्षा ज्ञान में अधिक प्रेम रखते हैं उसका कारण है। ज्ञान का प्रेम बहुत है, इतना ज्ञानी का प्रेम नहीं है। ज्ञानी से ज्ञान की इच्छा रखने की अपेक्षा है, ज्ञानी से ज्ञान की अपेक्षा रखने के बजाय उसके सिवाय बोध स्वरूप समझ करके भक्ति चाहना वो परम फल है, इसका उसका फल परम है। अधिक क्या कहें, समझ लेना, अधिक क्या कहें। बात तो वो बनी है कि कृपाणु देव का वियोग हुआ है, राळज से लिखा है पत्र। इस वक्त राळज गए थे ना, बहुत छोटा गांव है, एकदम छोटा गांव है, रूढ़ियों गांव थे साफ, हाँ, तालाब ने किनारे अत्यारे बांधे से जहाँ कृपाणु देव बैठता था, तालाब का किनारा है, देरी बेरी सब बैठक बैठक करते। वियोग से हुए दुख के संबंध में आपका एक पत्र 4-1 दिन पहले प्राप्त हुआ था। पत्र लिखा उसमें क्या वियोग का दुख लिखा था, उनको फटकारा है किसको, जिसको वियोग का दुख जिसने प्रदर्शित किया उनको फटकारा है, क्या बात होगी। हाँ, कि उनको अभिप्राय को पकड़ा है, इनका इसका इस आदमी का अभिप्राय को पकड़ लिया है, नाड़ पकड़ते हैं ना वैसे, उसमें प्रदर्शित इच्छा के विषय में थोड़े शब्दों में बताने जितना समय है। तो क्या हुआ होगा कि वियोग का दुख भी लिखा होगा और दो ज्ञान का प्रश्न भी रख दिया होगा कि मेरी इच्छा है थोड़ा उस विषय में आप हमको स्पष्टीकरण दीजिएगा। हमको लगा कि ये प्रश्न तो बहुत पूछता है, वियोग का दुख भी लिखता है लेकिन वास्तव में उसको भक्ति नहीं है, तो इसलिए लिखा है कि इस विषय में थोड़े शब्दों में बताने जितना समय है, ज्यादा बताने ज्यादा शब्दों में बताने जितना मेरे पास समय नहीं है, ऐसा लिखा है, है? वह यह है, ये थोड़े शब्द क्या है, वह यह है कि आपको जैसी ज्ञान की अभिलाषा है वैसी भक्ति की नहीं है। प्रेम रूप भक्ति के बिना ज्ञान शून्य ही है, तो फिर उसे प्राप्त करके क्या करना है बताओ ना, किसी को दिखाना है, क्या करना है आपको ऐसे ज्ञान को, तो क्या करोगे। जो रुका है मैंने अटका है वो योग्यता की न्यूनता के कारण है, और आप ज्ञानी के अपेक्षा ज्ञान में अधिक प्रेम रखते हैं उस कारण से है, उस प्रकार की अयोग्यता है कि ज्ञान में तो प्रेम है ज्ञानी में प्रेम नहीं है। ज्ञानी से ज्ञान की इच्छा रखने की अपेक्षा बोध स्वरूप समझकर भक्ति चाहना परम फल है, अधिक क्या कहे। मन वचन और काया से आपके प्रति कोई भी दोष हुआ हो, भद्वासुदी आठम है ना, क्षमावणी का दिन है, क्षमावणी का अवसर गया है, तो दीनता पूर्वक क्षमा मांगता हूं। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसे कलयुग में उस पदार्थ की प्राप्ति होती है। कलयुग चलता है ना, इस काल में महाविकट है, वो तो है, उस पदार्थ की मैंने भक्ति की प्राप्ति होती, परम पदार्थ तो वो है ना। तो क्या है कि ईश्वर जिस पर कृपा करता है कलयुग में उसको उस पदार्थ मैंने भक्ति की प्राप्ति होती है जो महाविकट है। उसमें थोड़ा दूसरी बात वो है, थोड़ी गहरी बात है। कि सत्पुरुष के प्रति भक्ति कुछ एक जीव को ही आती है, सबको नहीं आती है। अगर जो कुछ जो कोई जीव में आ गई तो कहते हैं कि ईश्वर की कृपा इसके पर हो गई है, वरना आती नहीं। भगवान की कृपा होती तो आती है, वरना आती नहीं। तो उसको जो परम पदार्थ की प्राप्ति हो गई तो ईश्वर की कृपा हो गई उसके पर। चलो जाओ, मैंने उसको भाग्यशाली माना है। उसका अर्थ क्या है? वो कोई ईश्वरकर्ता को तो मानते नहीं थे, लेकिन इसका अर्थ वो है कि वो जीव भाग्यशाली है कि जिसको सत्पुरुष के प्रति भक्ति आई, वो भाग्यशाली माना गया है। ऐसी बात है, उतनी सी बात। खुद ही बोध स्वरूप है। बोध क्या लेना है तुमको? खुद ही तो बोध स्वरूप है। तुमको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की मूर्ति है, बोध चाहिए तो बोध की मूर्ति है, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की मूर्ति है, प्रेम चाहिए तो प्रेम की मूर्ति है। तो तुमको भाषा चाहिए या पूरी मूर्ति चाहिए? किससे बोध लेना है? यह सब ख्याल में होते हुए भी प्रश्न है। आपकी बात में क्रम आता ही नहीं, आप तो एकदम अक्रम की बात करते हैं। बात तो आगे पीछे वो चली है। चार सौ कितनी है? 445। कि आपकी बात में क्रम आता ही नहीं, आप तो एकदम अक्रम की बात करते हैं। तो मुमुक्षुता की बात बहुत कम आती थी, और आगे पीछे बात वो चली थी कि कृपालु देव के वचनों में क्रम की बात बहुत आती है, जबकि आपके बात में तो क्रम की बात सुनने में नहीं आ रही है। आप तो एकदम अक्रम की बात करते हैं। तो 250 में बात आई है क्रम की, लेकिन मुख्य रूप से जो बात चलती थी वो बात है। तो कहते हैं कि क्रम फ्रम क्या? वो हंसने लगे थे। क्रम फ्रम क्या है, मतलब क्या है? कि धीरे धीरे आगे बढ़ना हमको पोसाता नहीं है। तो वो क्या है? खुद के परिणाम अनुसार बात करते हैं। उन्होंने एक दिन में सम्यक दर्शन को लिया, गुरुदेव मिले और एक दिन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। 24 घंटा भी नहीं गया, उसी दिन रात को ले लिया। तो धीरे धीरे क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद उनको इनकी तीव्र रुचि में जचती नहीं थी। उसमें शिथिलता का निषेध है। क्या क्रम का निषेध नहीं? निषेध नहीं है, शिथिलता का निषेध है, है? एकदम जोर से आगे बढ़ो, तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ो। धीरे धीरे कदम नहीं भरना है, छलांग मारो। एम कहते हैं पुरुषार्थ से छलांग मारो, जैसे सिंह छलांग मारता है ना अपने शिकार को, वैसे ही जाओ। धीरे धीरे क्या चलते हो? ऐसी बात है। ढीली पोची कोई बात करते हैं, इनकी चर्चा में चलती नहीं थी। कोई ढीली कि ढीला डच रहने से काम नहीं होता है, क्या बोलते थे कि ढीला डच रहने से काम होता ही नहीं। और इतना बड़ा अचीवमेंट है, सिद्ध पद की प्राप्ति, भगवान हो जाए, पामर प्राणी भटकता हुआ पामर प्राणी भगवान हो जाए, इतनी बड़ी बात है, तो उसमें धीरे धीरे क्या चलना, ऐसा धीरे धीरे चलने की बात पसंद नहीं करते। तो कहते हैं कि क्रम फ्रम क्या, अक्रम को पकड़े बिना क्रम स्वयं, अक्रम को पकड़े तो क्रम स्वयं होता है। अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेने तो क्या है कि परिणाम में क्रम होता है, और दृढ़ स्वभाव में तो कोई क्रम नहीं है, अनंत गुण एक साथ पड़े, अनंत असंख्य प्रदेश भी एक साथ पड़े हैं, वहां तो एक साथ सब है अभेद, तो अक्रम को पकड़ो। आपकी बात में अक्रम आता है, मतलब क्या है कि स्वभाव की बात बहुत आती है, पर्याय की बात उतनी आती नहीं है। तो पर्याय में तो अशुद्धता छूटना और शुद्धता होना, उसमें क्रम पड़ता ही है, गुमस्थान का क्रम होता है, मुमुक्षुता का क्रम होता है। तो बस अपने द्रव्य स्वभाव को पकड़ करके बैठ जाओ ना, ये शुद्धता आदि का क्रम तो स्वयं होता है, करना नहीं पड़ता, वो तो सहज स्वयं हो जाता है। और स्पष्टीकरण दिया है वहां के परिणाम के क्रम का विषय मात्र जानने का विषय है, अवलंबन लेने का नहीं। तो अंदर जो अंतर्ध्वनि है, अंडर टोन है, वो इस बात का है कि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने की बात करते हैं, पर्याय का विषय जितना भी है जानने का विषय है, जोर देने का और अवलंबन लेने का नहीं है। वो ध्वनि था उसमें, शिथिलता भी नहीं रखो और परिणाम की कितनी भी चर्चा करो तो भी उस अभिप्राय के साथ करो कि ये सब जानने का विषय है, अवलंबन लेने का नहीं। वो सिद्धांत को पकड़ करके चर्चा करो, जब तो परिणाम की चर्चा करने का परमिशन मिलता है, वरना परिणाम की चर्चा करोगे तो पर्याय दृष्टि तीव्र हो जाएगी, पर्याय बुद्धि तीव्र हो जाएगी। परिणाम की चर्चा द्रव दृष्टि और द्रव का लक्ष्य रख करके, उसकी अपेक्षा रख करके करनी है तो करनी है, वरना वो बात साथ में है, वो उनका ध्वनि था कि अक्रम को मैंने स्वरूप को द्रव्य स्वभाव को पकड़े तो क्रम स्वयं होता ही है, करना फरना क्या, सब जानने की बात है, जान लिया एक रख लो, एक जान करके एक बाजू रख लो, उसको अवलंबन लेने की चीज वो नहीं है। प्रश्न छे के सत्पुरुष पासे सम्यक दर्शन मांगू नहीं, सत्पुरुष के पास सम्यक दर्शन मांगना नहीं। जब सत्पुरुष के पास भक्ति मांगते हैं तब ऐसा बात आती है कि बहुमान आएगा तो भक्ति आएगी, तो अब भक्ति के लिए क्या करना, क्योंकि बहुमान आए वैसी अपनी दशा तो हुई नहीं कि बहुमान आए, तो क्या करना, सत्संग करना। सत्संग से परिचय होगा और परिचय से बहुमान आएगा, परिचय बिना पहचान होती नहीं और पहचान बिना बहुमान आता नहीं। ओग भक्ति से तो कोई फायदा होता नहीं, और ओग भक्ति में सकामता आ जाएगी तो मलिनता आ जाएगी। ओग भक्ति हुए तो भी कोई ऐसा कहे कि हमको तो भक्ति का परिणाम आता है, भले ही पहचान नहीं हो तो क्या हम छोड़ दें क्या, वो भी प्रश्न हो। कि अभी यदि भक्ति प्रधान परिणाम चलते हो तो निष्काम भाव से चलना वो शर्त है, वो परिणाम निष्काम भाव से चलना चाहिए, सकाम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब तो उसमें निर्मलता आएगी और पहचान होने का अवसर भी आएगा। सकामता हो गई तो मलिनता आए बिना रहेगी नहीं, और उसमें कोई पारमार्थिक फल, कोई पारमार्थिक आत्मकल्याण के विषय में कोई विकास होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। नानी नो खप हो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, उसमें समाविष्ट हो जाता है। ज्ञानी और ज्ञान प्रकाश दो तत्व तो नहीं है, दो वस्तु तो नहीं है। जब वस्तु एक है तो फिर एक चाहिए एक नहीं चाहिए वो बात कहाँ रही। तो आप ये कहेंगे कि हम तो ज्ञान प्रकाश में ही ज्ञानी को चाहते हैं, तो उसका भेद वो इसलिए छाटते हैं कि उसको भक्ति देखने में नहीं आई, भक्ति देखने में नहीं आई, और जानकारी बढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए, वो ज्ञानी के पास है, उसका पता चल गया उसको कि इसके पास सब प्रकार का ज्ञान तो है, बराबर स्पष्टीकरण दे देते हैं, जो भी पूछते उसका स्पष्टीकरण मिल जाता है, तो चलो ज्ञान तो ले लो। हाँ फिर काम कर लेंगे, तो बोले कि वो बात बनने वाली नहीं है, जानकारी का अहम भाव बढ़ जाएगा, जानकारी का अभिमान बढ़ जाएगा, दूसरा होने वाला नहीं, गुण तो होगा नहीं, एक नया दुर्गुण पैदा हो जाएगा, ये बात बनेगी। इसलिए उनको दुर्गुण से बचाया है, क्या उनको नुकसान से बचाया है, ये नुकसान करेगा। तो हीरा और हीरे की चमक साथ में ही रहता है, कोई कहे हमको चमक चाहिए हीरा नहीं चाहिए तो मिलेगा क्या, सोने की चमक चाहिए सोना नहीं चाहिए वो कैसे मिलेगा, सोना खरीदेगा तो चमक उसमें आ जाएगी, तो वो तो अलग रहती नहीं। इस तरह से जवाब तो दे दिया है कि क्रम स्वयं होता है, हम क्रम को नहीं मानते वो कहां बात है, क्रम होता है नहीं होता है ऐसा थोड़ा थोड़ी ना बोला कि क्रम होता ही नहीं, छोड़ो क्रम की बात, ऐसा तो जवाब नहीं दिया ना। क्रम का स्वीकार कर लिया है उन्होंने, लेकिन क्रम पर जोर दे करके अवलंबन भूत विषय का जोर छूटना चाहिए, उसका ध्यान खींचा है, इसलिए तो स्पष्टीकरण दिया ब्रैकेट में कि क्रम पर वजन जाएगा और अक्रम स्वभाव का वजन छूट जाएगा तो भी काम होने वाला नहीं है, इसलिए अवलंबन नहीं लेना चाहिए, क्रम का बात समझो, समझ करके अवलंबन लेना मत, वो सिर्फ जानने का विषय है, दो बात होती है, एक जानने की और एक अवलंबन लेने की, दो ही खाता है, हमारे स्वाध्याय में दो खाता रख करके बैठना है, जो भी हमारे सामने बातें आई उसको खताते जाओ, किस खाते में वो खताना है वो पर्याय की बात आई, कोई भी बात आई जानने के खाते में खताओ, स्वरूप की बात आई, स्वभाव की बात आई, अवलंबन लेने के खाते में खताओ, दो खाता रख करके खताते जाओ बस। हाँ बस वही करना है। तो वो परिभ्रमण छोड़ने के लिए, छुटने के लिए द्रव्य दृष्टि आएगी तब तो बीज झेलेगा ना, भाव बीज कब झेलेगा, परिभ्रमण कब छूटेगा, द्रव्य दृष्टि होगी तब। सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है, तो भाव बीज जलता है, तो वो बात की संधि हो गई कि नहीं हो गई, क्या बात है। ये क्या उत्तर, दोनों बात है उसमें। तो समर्थ है कहने के, कहने का सामर्थ्य है, बात दोनों कर दी है कि स्वभाव का अवलंबन लो, विधि का विषय सहज होएगा। वही और अवलंबन लेना वही तो विधि है। क्या क्या बोले, अक्रम को पकड़ो, तो पकड़ना क्या है, विधि है, और अक्रम क्या है कि स्वभाव है। बात तो दोनों आ गई, दो शब्द में दो बात आ गई, दो शब्द में दोनों बात आ गई, तो उसका सामर्थ्य है कहने का। यहाँ तक